मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 9 अप्रैल 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसे आप इम्यून पावर कहते हैं उसके बारे में कुछ बातें की थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है। उसे मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। एक हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो खासकर अभी कोरोना वायरस के दौर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरे हमारे मस्तिष्क की या यूं कह लीजिए विचारों की प्रतिरोधक क्षमता, और वो कोरोना वायरस के अभी के वातावरण में यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही मैंने इस विषय का चुनाव किया था और कल मैंने जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके तहत हमारे जीन्स का कितना बड़ा योगदान होता है इस पर थोड़ी सी बातें की हैं। उसमें मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि ठीक है, जो हमारे जीन्स हैं जो हम में आ गए हैं हमारे पूर्वजों के जरिए उसमें हमारा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे देश का जो वातावरण रहा है, हमारे जीवन की जो शैली रही है, हमारी जो फिलॉसफी रही है, जो हमारा भूगोल रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके तहत मैंने बकायदे लैब्राडोर जो डॉग होता है उसके माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये उसका एक पक्ष है और डेफिनेटली आप कह सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत इस मायने में बहुत ही मजबूत राष्ट्र है। और कोरोना के बारे में जो भी आप खबरें सुन रहे हैं, जो रिसर्च आ रही हैं, जो लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, उसमें आप पा रहे हैं कि भारत को इस दृष्टि से काफी सुदृढ़ कहा जा रहा है कि भारत में जो मलेरिया के टीके लगते हैं उसके कारण उनका इम्यून पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो जितने संघर्षशील हैं उसके कारण उनका इम्यून पावर बहुत बढ़ गया है। उनकी जो जीवन शैली है, देखिए भारत, हम भारतीयों की जीवन शैली उस तरीके से आप देखें तो बहुत ही सिस्टमेटिक है। अब नए पीढ़ी के साथ और महानगरों में भले ही वो जीवन शैली थोड़ी सी प्राकृतिक शैली से हट करके हो गई है, लेकिन सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि हमारी जीवन शैली काफी मजबूत है। हाँ, पोषण आहार के स्तर पर हम जरूर कमजोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वच्छता का भी हमने अब काफी कुछ रास्ता निकाल लिया है। भारत भी धीरे धीरे आप देखिए कि काफी क्लीन होता चला जा रहा है। तो ये हमारे पक्ष में बहुत ही ऐसे मजबूत बिंदु हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें बहुत ताकत देते हैं, ताकत दे चुके हैं। अब यूं कह लीजिए कि हमारे अंदर ताकत मौजूद है, हमारे शरीर में जो सेनाएं हैं जो हमारी रक्षा कर रही हैं वो प्रतिरोध में खड़ी है। कोरोना वायरस आएगा, टकराएगा, इनसे संघर्ष करेगा, या तो वो मर जाएगा या वापस लौट जाएगा, और इसके प्रमाण हमें मिल भी रहे हैं। इसके प्रमाण मिल रहे हैं कि भारत इतनी घनी आबादी वाला देश है, हमारे लोग बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, हम बहुत समूह में रहना पसंद करते हैं, सामुदायिक जीवन पद्धति हमारी होती है। इसके बावजूद जो इसके संक्रमण की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो उतनी नहीं है जितनी कि यूरोपीय देशों में रही है। तो हमारे लिए बहुत संतोष की बात है और साथ ही साथ सच पूछिए तो गर्व की भी बात है, और जो इस बात की पुष्टि करता है कि हम भारतीयों की जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून पावर है, वह यूरोपीय देशों की तुलना में काफी मजबूत है। भले ही आर्थिक रूप से हम उनसे कमजोर हों और भले ही शैक्षणिक दृष्टि से भी हम उनसे पिछड़े क्यों न हों, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता तो कहीं ना कहीं हमारी उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, अब इस प्रतिरोधक क्षमता से ही जुड़ी हुई एक और बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूं। और सच पूछे तो मुझे कभी कभी यह लगता है कि अपनी बात सीधे सीधे न कह करके अप्रत्यक्ष रूप से भी कही जाए, या यूं कह लीजिए कि इन सब इश्यूज पर, यानी कि जीवन से संबंधित मामलों पर जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, जो एकेडमिशियन हुए हैं, जो फिलॉसफर हुए हैं, अगर मैं उनकी भी बातें बीच बीच में आप सबको बताता चलूं तो इससे आपके ज्ञान का भंडार भी समृद्ध होगा और फिर समय आने पर आप अपनी तरफ से निर्णय लेने के लायक भी बन सकेंगे। और सही बात यह है दोस्तों कि इस लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से मैं बिल्कुल इस बात को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं आपकी थालियों में मछली पकड़ पकड़ करके परोस नहीं रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं, अगर सिखा सका तो, ताकि रोज आप मछली पकड़ें और अपना रोज थाली में मछली परोस कर खाएं, यानी कि इतनी क्षमता आप में विकसित हो जाए। तो इसी लिहाज से आज मैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में बात करने जा रहा हूं। चार्ल्स डार्विन जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से दुनिया में मनुष्य जाति का विकास हुआ है। हालांकि वो दूसरी प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम यहां मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं मनुष्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी कि इस धरती पर कौन सा जीव सबसे पहले था और किस तरह से उस जीव का धीरे 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 विकास होता रहा, एक कोशीय, फिर बहुकोशीय, फिर जल प्राणी, फिर थल प्राणी, फिर उभयचर, मतलब इस तरीके से करते करते फिर बंदर और फिर मनुष्य बना, है ना। उन्होंने अपना एक डेवलपमेंट दिखाया है जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और ये उनकी बहुत बड़ी देन है इस पृथ्वी नामक ग्रह को। उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए उसके तीन मूलभूत बिंदु हैं, तीन मूलभूत, हालांकि उन्होंने और बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने पहला जो पॉइंट दिया, मैं पहला सेकंड और जो थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं उसी प्रायोरिटी पर नहीं है, है ना। उन्होंने एक बात का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आगे चल करके मैं इन्हें विस्तार से बताऊंगा क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं इन्हें अच्छे तरीके से समझा सकूं। हाँ, जल्दी जल्दी निपटाना अगर हो तो मैं बता सकता हूं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि जो अस्तित्व है हमारा, हमें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो भी वस्तु, जो भी प्राणी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा, नहीं करेगी, वह चीज नष्ट हो जाएगी। यानी कि जो चीज स्ट्रगल में रहेगी वह मजबूत होती चली जाएगी, आप इसे कह सकते हैं। आप देखिए कि जब हम संघर्ष करते रहते हैं तो हमें मजबूती आती है। थोड़ी देर के लिए आप पालथी मारकर चुपचाप बैठ जाइए या फैला करके ही बैठ जाइए, देखिए पैर सुन्न होने लगता है, हाथ को एक तरफ रख दीजिए, धीरे धीरे हाथ भी सुन्न होने लगते हैं। यानी कि अब चूंकि वह स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो उसके एग्जिस्टेंस के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दूसरा उन्होंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ नेचर, यानी कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति सेलेक्ट करती है कि मुझे किसे बचा करके रखना है और किसे नष्ट कर देना है। तो उसमें जो बेस्ट होता है, जो उसको सर्वोत्तम लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं, उनका वो सिलेक्शन करती है और बाकी चीजों को वो खत्म कर देती है। ये प्रकृति का नियम रहा। देखिए कि कभी डायनोसार हुआ करते थे इस धरती पर, लेकिन वो डायनोसार खत्म हो गए क्योंकि प्रकृति को लगा कि नहीं, अब इनका चयन नहीं किया जाना चाहिए, तो उसने नष्ट करने का चयन किया और उन्हें नष्ट कर दिया। सिलेक्शन ऑफ नेचर। दोस्तों, ये जो मैं बातें बता रहा हूं हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप मत समझिएगा कि मैं कोई साइंस की बात बता रहा हूं, कोई ज्योग्राफी की बात बता रहा हूं, कोई मैं ग्रह उपग्रह की बात बता रहा हूं, मैं जीवन की बात बता रहा हूं, बिल्कुल जीवन की बात, और जीवन की बहुत ही गहरी और केंद्रीय बात। इसके बाद तीसरा उन्होंने कहा फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो बचेंगे, कौन लोग बचेंगे, वे लोग बचेंगे जो फिट रहेंगे। फिट रहेंगे का मतलब ये नहीं कि मैं फिजिकली अपने आप में फिट हूं, मैं अपने एनवायरमेंट के साथ कितना सामंजस्य बिठा पा रहा हूं ये मायने रखेगा। जो सामंजस्य बिठा लेगा वो सर्वाइव करेगा, बचेगा। जो सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा वो धरती पर से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तीन उनके सबसे प्रमुख बिंदु हैं। आप इन तीनों बिंदुओं को मित्रों याद रखिएगा। मैं इन पर आगे चल करके डेफिनेटली कम से कम एक एपिसोड में तो बात करूंगा ही, क्योंकि हमारी जिंदगी के लिए बहुत मुझे ये कोर सब्जेक्ट या कह लीजिए कोर पॉइंट्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल गस्टेड हॉलीडे है आप जानते हैं, और इसके बाद सैटरडे और संडे है, यानी कि तीन दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात हो सकेगी। इस बीच में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब बहुत सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, विवेकवान रहें, धैर्यवान रहें, और जो भी स्थितियां हैं पूरे हिम्मत के साथ, पूरी तार्किकता के साथ उसका मुकाबला करें। कहीं कोई बहुत ज्यादा विध्वंस नहीं होने जा रहा है। अपने मन को मजबूत बनाएं, और साथ ही साथ इसके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, डेफिनेटली उन सावधानियों को बरतते रहें। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, साथ में अभिवादन भी स्वीकार करें। नमस्कार।